अष्टाङ्गपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित छह दिवसीय आत्मन्वेषण की यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज इस यात्रा का अंतिम और छठवां दिन है। अगले पांच दिनों में हम सब ने बहुत बहुत श्रवण किया और निश्चित रूप से बहुत श्रवण करने के कारण बहुत भूल भी गए होंगे, इसलिए आइए कुछ याद कर ले क्या हमने श्रवण किया। सबसे पहले दिन हमने मनुष्य जीवन और प्राणियों के जीवन में क्या अंतर है यह देखते हुए हमने सुना कि भगवान ने मनुष्य को एक स्पेशल वस्तु दी है कि मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है और मनुष्य को चाहिए जिज्ञासा करे। वेदांत सूत्र कहता है यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा तो होनी चाहिए परंतु ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। तत्पश्चात वह जिज्ञासा करके ज्ञान कहां से प्राप्त करना चाहिए यह देखते हुए हमने तीन प्रमाण की चर्चा की। उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रमाण था शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाण वेद के रूप में उपस्थित हैं, इसलिए वेदों से हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है, हम कौन हैं और किस प्रकार भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। हमने यह भी सुना वेद कई प्रकार के हैं। थोड़ा स्लो कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। वेद कई प्रकार के हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनको समझाने के लिए उपनिषद की रचना की व्यासदेव ने, और उन्हें समझाने के लिए पुराण और नाना प्रकार के इतिहास, रामायण, महाभारत। तो वेद और शास्त्र अनंत है, इसे पढ़ना इस एक मनुष्य जीवन के लिए मुश्किल है, और अगर समय भी मिल जाए तो उनमें जो भाषा है वह अलौकिक संस्कृत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह जानकर सभी वेद और शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता में दे दिया। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धम गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। सभी वेद और उपनिषद अगर गाय के समान है तो जैसे गाय का सार है दूध, वैसे ही सभी वेद और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए हमारे जीवन के जितने भी आध्यात्मिक प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात दूसरे दिन हमने श्रवण किया कि हम कौन है, हम कौन है। 60% लोग समझे हैं, 40% की आवाज नहीं आई। हम कौन है? हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। छह प्रमाणों के द्वारा हम यहां पर साबित किए कि वास्तव में हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ये जो हमें दिख रहा है यह शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इस पंच महाभूत से बने हुए इस शरीर में पांच सूक्ष्म वस्तु है और उस पांच सूक्ष्म वस्तुओं में से तीन भौतिक है और दो आध्यात्मिक है। मन बुद्धि अहंकार ये तीन सूक्ष्म भौतिक चीज है और तत्पश्चात आत्मा और परमात्मा ये दोनों सूक्ष्म आध्यात्मिक वस्तु है। और मृत्यु जब आती है तब पंच महाभूत से बना हुआ यह शरीर यहीं पर रह जाता है और मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा इस शरीर से निकल जाते हैं। मन बुद्धि अहंकार आत्मा परमात्मा का इस शरीर से निकलना इसे मृत्यु कहा जाता है। तत्पश्चात तीसरे दिन हमने भगवान कौन है यह चर्चा की। कई प्रमाणों के द्वारा सबसे पहले हमने यह साबित किया कि भगवान का अस्तित्व है, और अगर भगवान का अस्तित्व है तो वे कौन है? कौन है? आधे लोग ही समझे। भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही भगवान है। तो फिर और जितने भी है देवी देवताए हैं। कितने हैं देवी देवता? 33 करोड़। तो कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और जितने भी हैं वे सब देवी देवता गण हैं। तत्पश्चात चौथे दिन हमने प्रकृति काल और कर्म की चर्चा की। यह प्रकृति भगवान की शक्ति है और काल भगवान ही काल के रूप में आते हैं और पापी जीवों को निगल जाते हैं, और कर्म की क्या गति होती है यह भी हमने चर्चा की। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म विकर्म और अकर्म। तो इन तीनों कर्मों में से हमें कौन से कर्म करने चाहिए? अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए जो कार्य किया जाता है उसे अकर्म कहते हैं। यदि हम अकर्म करते हैं तो कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं, और दूसरी बात हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए हम रास्ता क्लियर कर रहे हैं। तत्पश्चात कल हमने सर्वोत्तम योग पद्धति के बारे में चर्चा की। कई प्रकार के योग हमने कल सुने, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो योग के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु मनुष्य को चाहिए कि योग के बारे में जाने, और सभी मनुष्य को चाहिए कि योगी बने। परंतु इस संसार में योग क्या होता है, भगवान क्या होता है, लोग ये नहीं जानते हैं। परंतु वे लोग कई कई जन्मों के बाद जब थोड़ी सी बुद्धि आती है तब वे जानने लगते हैं कि अगर हम वेद और शास्त्रों के, वेदों के अनुष्ठान के अनुसार हम कार्य करेंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे, तो वे हमारी सारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो वेदों में से इस बात को पकड़कर देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो ऐसे लोगों को कर्मकांडी कहा गया है भगवद गीता में, जो फल की आशा रखने वाले हैं और भौतिक फल की इच्छा रखकर जो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं उसे भगवद गीता कर्मकांडी की संज्ञा देती है। परंतु ऐसे कर्मकांडी हजारों हजारों जन्मों के बाद जब उनकी बुद्धि प्योरिफाई होती है, शुद्ध होती है, तब वे निष्काम कर्म योगी बनते हैं। कर्म के फल को त्याग देते हैं, कर्म करते हैं परंतु कर्म के फल की आशा नहीं रखते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कर्म नेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते हैं, कर्म के फल की आशा नहीं रखते हैं, परंतु भगवान कहते हैं इससे भी बड़े योगी वो हैं जो कर्म तो करते हैं परंतु कर्म के फल को मुझे अर्पण करते हैं। वास्तव में कर्म के फल को अगर कृष्ण को अर्पण किया जाए तो वो है वास्तविक कर्मयोगी। तो ऐसे कर्मयोगी हजारों हजारों जन्मों के बाद, जब निष्काम कर्मयोगी हजारों हजारों जन्मों के बाद उनकी बुद्धि प्योरिफाइड होती है तब वे ज्ञान योगी बनते हैं। और शास्त्र के वक्तव्य के द्वारा भगवान को ब्रह्म के रूप में जानने लगते हैं। उनकी बुद्धि पूरी पूरी शुद्ध नहीं होती है, इसलिए भगवान को केवल ब्रह्म के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग बहुत दुख भोगते हैं। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाब्धि अवाप्यते। तो ऐसे ज्ञान योगी जब हजारों हजारों जन्म के बाद बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये ज्ञान योगी भगवान को ध्यान के रूप में परमात्मा के रूप में देखना चाहते हैं। अब तक वे ब्रह्मा भगवान को ब्रह्म के रूप में देखते थे, अब भगवान को परमात्मा के रूप में देखने के लिए ध्यान करते हैं। और उस ध्यान की विधि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, आठ प्रकार के स्तर हैं, उसे अष्टांग योग कहा जाता है। सबसे पहले अष्टांग योग में यम होता है। यम का अर्थ होता है कुछ नहीं करना है। तो कल हमने सुना कि उस अष्टांग योग में सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात नियम होता है, और नियम में जब परिपूर्णता आ जाती है तब आसन बिछाया जाता है, और उस आसन पे बैठकर प्राणायाम करना होता है। तत्पश्चात प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ होता है मन और इंद्रियों को भौतिक विषयों से मुक्त करना। जब व्यक्ति प्रत्याहार करने के अभ्यस्त बन जाते हैं तब धारणा करते हैं, भगवान के परमात्मा के रूप की धारणा करते हैं। फिर धारणा करने के बाद उस पर ध्यान धरते हैं, और जब उस पर ध्यान टिक जाता है तब उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। और भगवान कहते हैं उस समाधि की अवस्था में वह योगी इस संसार के सभी भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति केवल दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। समाधि के बाद वह व्यक्ति भक्ति योग करने के लिए योग्य बन जाता है, और तत्पश्चात वे भक्ति योग करने लगता है। तो इस प्रकार से भक्ति योग तक पहुंचने के लिए भगवान एक सीढ़ी के रूप में यह योग की पद्धति बताते हैं। परंतु भगवद गीता के छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कह दिए, भक्ति योग तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। जैसे ये नाक को अगर मुझे स्पर्श करना है तो ऐसे भी मैं स्पर्श कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार इस भक्ति योग तक तो सबको पहुंचना ही है। कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो उसे भक्ति योग तो करना ही होगा। तो भक्ति योग करने के लिए दो रास्ते हैं। जैसे हमने दृष्टांत दिए थे, अगर 25 माल की बिल्डिंग पर जाना हो, 25वें माले पर जाना हो, तो 25वें माले पर जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। कौन से? एक तो सीढ़ी होती है और एक लिफ्ट होती है। तो 25वें माले तक जाने के लिए अगर कोई सीढ़ी से चढ़ता है तो ये सब अलग अलग योगों की पद्धति के द्वारा विभक्ति योग तक पहुंचता है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति सीढ़ी का उपयोग नहीं करता है, बुद्धिमान व्यक्ति लिफ्ट का उपयोग करता है, और लिफ्ट में बैठकर स्विच दबाकर वे भक्ति योग प्रारंभ कर देता है। भगवान कहते हैं यह समस्त योगी में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वो है, योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेन अंतरात्मना। यह सभी योगियों में मुझे सबसे प्रिय वह योगी है जो श्रद्धावान भजेत योमाम समय युक्त तमो मत, जो अंतरात्मा में मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है और मेरे नाम का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं भक्ति योग सबसे उत्तम है, और सब योगों में न पढ़ते हुए सबको भक्ति योग अपना लेना चाहिए। तो सभी मनुष्य को, सभी व्यक्ति को चाहिए कि वे भक्ति योग करें, और इस भक्ति योग के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति योग का अर्थ, भक्ति का अर्थ श्री प्रभुपाद जी एक्टिव डिवोशनल सर्विस इस प्रकार से करते हैं। भक्ति का अर्थ होता है भगवान की प्रेम पूर्ण की गई सेवा। तो भगवान की सेवा नौ प्रकार से की जाती है। हमारे शास्त्र नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं और शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज भी यह नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन किए। वे नौ प्रकार की भक्ति की चर्चा हमने कल की और ये नौ प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति भी अगर कोई करे तब भी वह कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकता है। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति योग के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और अगर कोई भक्ति योग करता है तो साधारण सिद्धि, साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष उसे बेनिफिट ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। इसलिए एक जगह कहा है, भक्ति स्थवई स्थिर तरा भगवान यदिस्या देवन न फलती दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंद तिलांजलि सेवते असमान धर्म अर्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। अगर कोई भक्ति योग करने लगता है तो धर्म अर्थ काम उस भक्त की प्रतीक्षा करता है कि कब यह भक्त यह धन लेगा और इस धन को अपनी भक्ति में लगाएगा। अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग करता है तो मुक्ति दोनों हाथ जोड़कर उस भक्त के चरण में खड़ी रह जाती है कि तुम मुझे प्राप्त हो जाओ, परंतु भक्त उस मुक्ति को भी ठुकरा देता है। क्योंकि भक्ति में जो आनंद है वो मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है। एक भक्त बहुत ही सुंदर कहते हैं, वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है। भगवान के धाम में, भगवान की भक्ति में जो आनंद है वे मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है। पांच प्रकार की मुक्ति, सायुज सालोक्य सारिप्य साष्टी इत्यादि, ये मुक्ति में वो आनंद नहीं, भक्ति में जो आनंद है वो आनंद मुक्ति में भी नहीं। बहुत ही सुंदर कहते हैं, वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमे न सरोज सुधारस में जो ललाम लता विराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहा जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के। वे कहते हैं जितना सुख कृष्ण के नाम में है उतना सुख और कहीं नहीं और कहीं नहीं और कहीं नहीं। इसलिए सदा सर्वदा कृष्ण का नाम जपते रहना चाहिए, हरे कृष्णा तो भजन करने वाले भक्त के चरण में मुक्ति पड़ी रहती है, परंतु भजन करने वाला उसे ठुकरा देता है क्योंकि भगवान की भक्ति में बहुत आनंद होता है। तो यह सुनकर कि हम सबको भक्ति करनी चाहिए, तो जो लोग नए होते हैं वे डर जाते हैं। भगवद गीता का सार है भक्ति करना, अंत में भगवान भक्ति योग का वर्णन करते हैं। और जब नए लोग सुनते हैं कि हमें भी भक्ति करनी है तो मन में बहुत टेंशन आ जाता है कि हमें भी ये लोगों की तरह बाल मुंडवा कर या सफेद कपड़े पहन कर मंदिर में बैठ जाना होगा। अक्सर लोग ये धारणा करते हैं कि भक्त का अर्थ है सब कुछ घर बार छोड़कर मंदिर में बैठ जाना, परंतु ऐसी बात नहीं है। भक्ति कहीं भी किसी भी अवस्था में हो सकती है। बहुत ही सुंदर आचार्यगण दृष्टांत देते हैं, जैसे इस देश का अच्छा नागरिक बनना हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सब लोग पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस वाले बन जाए। अगर इस देश का अच्छा नागरिक बनना हो तो इस देश के गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो करना होगा। इस गवर्नमेंट के नियम कानून का अगर हम फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हम इस देश के अच्छे नागरिक माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें भगवान का भक्त बनना है तो भगवान के दिए हुए नियम कानून के अनुसार हम हमारा जीवन बिताएंगे तो हम भगवान के भक्त माने जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब लोग मंदिर में बैठ जाएं। हम जहां है ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, घर पर रहते हैं, जब भी जो भी कार्य करते हैं उन कार्य के साथ भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति बिल्कुल प्रैक्टिकल है, परंतु भगवान जो नियम और कानून बताए हैं उस नियम और कानून का पालन करना अति आवश्यक है। और अगर भगवान के दिए हुए नियम और कानून का पालन करते हैं तो हम भक्त माने जाते हैं। इसलिए इन 5 दिनों में कई लोग हमें पूछे, प्रभु अब हम सब कुछ समझ गए, अब आप हमें यह बताओ हमें करना क्या है, अब ज्यादा नहीं सुनना है, सुन सुनकर थक गए, अब बस यह बता दो करना क्या है, तो आज से हम करना प्रारंभ करते हैं। तो वास्तव में हम क्या बताएंगे, साक्षात भगवान बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अच्छा नागरिक बनने के लिए कुछ चीज करनी होती है और कुछ चीज नहीं करनी होती है। अगर अच्छा नागरिक बनना हो तो देश सेवा करनी होगी, और अच्छा नागरिक बनना हो तो रास्ते से अगर मोटर बाइक लेकर जाते हो तो सिग्नल नहीं तोड़ना है। तो कुछ चीज नहीं करनी होती है और कुछ चीज करनी होती है। वैसे ही अगर अपने आप को भक्त बनाना है तो कुछ चीज ऐसी है जो हमें नहीं करनी है और कुछ चीज ऐसी है जो हमें करनी है। तो सबसे पहले हम उसकी चर्चा करेंगे जो हमें नहीं करना है, क्योंकि जब आग लगती है तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, आग को बुझाना चाहिए या वह ढूंढना चाहिए कि आग किसने लगाई। सबसे पहले आपको बुझाना चाहिए, बाद में सब कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमसे जो गलत काम हो रहे हैं उस गलत काम को रोकना चाहिए। तो सबसे पहले भक्ति में हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, केवल 4 ही चीज नहीं करनी है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि धर्म जो है, धर्म 4 पैरों पर खड़ा है। धर्म के 4 स्तंभ है, दया, तप, शुद्धता और सत्यता। अगर ये 4 चीज किसी में है तो माना जाता है कि वह व्यक्ति धार्मिक है, वे धर्म का पालन कर रहा है। अगर ये 4 चीजों में से 1 चीज भी नहीं है तो वह धर्म नहीं माना जाता है। तो धर्म 4 चरण पर खड़ा है, दया, तप, शुद्धता और सत्यता। तो इन 4 चीजों को हमारे जीवन में ढालने के लिए सबसे पहले हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर हम मांसाहार करते हैं तो हमारे हृदय में दया नाम की वस्तु नहीं रहती है, हम निर्दयी बन जाते हैं, और निर्दयी व्यक्ति कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहला यम दिया है जो नहीं करना है, वो है मांसाहार नहीं करना है। अब मांसाहार में कह रहा हूं तो उसमें कई सारी चीज आ रही है, ये हमें समझ लेना चाहिए। ये मांसाहार में अंडे नहीं खाने चाहिए और किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाना चाहिए, और भी कई सारी ऐसी चीज है जो किसी प्राणी की हत्या करके खाते हैं, ये कुछ नहीं खाना चाहिए। परंतु इस संसार में बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। संसार में लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ और शक्ति बढ़ाओ। कलयुग का प्रभाव है तो इस प्रकार से सब लोग प्रचार भी करते हैं, ये मांसाहार करो, अंडे खाओ। परंतु हमारे इस्कॉन के एक महाराज हैं, नव योगेंद्र महाराज, वे आगे एक लाइन जोड़ देते हैं। वे कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये संसार के लोग कहते हैं, परंतु हम ये कहते हैं अगर रोज खाओगे अंडे तो फिर पड़ेंगे तुम्हें यमराज के डंडे। ये शास्त्र का कथन है। इसलिए हमें मांसाहार, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। और मांसाहार में भी सबसे दुष्ट जो लोग हैं वे गाय का मांस खाते हैं। गाय का मांस खाने वाले बहुत क्रूर होते हैं और बहुत निर्दयी होते हैं। तो ऐसे मांस खाने वालों से तो बचना चाहिए। सबसे पहले इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी तो यहां तक कहते हैं जब तक गाय का मांस, जब तक गाय का खून इस जमीन पर गिरेगा तब तक इस देश में शांति नहीं आ सकती है। लोग इस देश में शांति लाने के लिए बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पॉलिटिशियन बहुत बहुत कार्य करते हैं, शांति समारोह शांति यज्ञ इत्यादि करते हैं, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक गाय को काटा जा रहा है, गाय को काटना जब तक बंद नहीं होगा तब तक शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि गाय सात माताओं में से एक जननी एक माँ है, वो है गाय। और गाय को अगर मारा जाए तो जरा कल्पना तो कीजिए, जिस गाय के पीछे इस तीनों ब्रह्मांड भुवन के नाथ भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हैं, उस गाय को इस संसार के लोग काट रहे हैं, कहां से शांति आ सकती है। तो ऐसे गाय को और सभी पशुओं को मारना नहीं चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए, यह है पहला यम, ये पहली चीज जो नहीं करनी है। और अगर यह नहीं करते हैं तो हमारे हृदय में दया बनी रहती है। दूसरी चीज जो है जो नहीं करनी है वो है नशा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अगर हम नशा करते हैं तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, तप का जो स्तंभ है वे गिर जाएगा। तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अब नशा में चाय कॉफी कांदा लहसुन बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे टेंशन आ गया है, अब तक तो प्रभु जी ठीक थे परंतु आज टेंशन दे रहे हैं। अब देखिए आप लोगों ने कहा था अब हमें क्या करना चाहिए और भगवत गीता को हमारे जीवन में कैसे उतारना है, मैं यही बता रहा हूं। भगवान जो कहे हैं उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से कहते हैं तो एक व्यक्ति ने पूछा था कि भगवान ने अगर कांदा बनाया है, प्याज भगवान ने ही बनाया है, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते हैं। और गरीबों को एक व्यक्ति था, किसने पूछा था, गरीबों की कस्तूरी कही जाती है प्याज को, और भगवान ने ही बनाया है तो हम प्याज क्यों नहीं खा सकते हैं। भगवान ने तो बहुत कुछ बनाया है तो वे क्यों नहीं खाते हो। सबसे पहले हमें गीता में देखना चाहिए, भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये अर्जुन जो तमोगुण में रहते हैं वे नरक में जाते हैं, जो रजोगुण में रहते हैं वे यहीं रह जाते हैं, और जो सत्वगुण में रहकर कार्य करते हैं वे ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो अगर ऊपर के लोकों में जाना है, अगर मोक्ष को प्राप्त होना है तो सत्वगुणी बनना होगा, और सत्वगुणी बनने के लिए सत्वगुणी आहार खाना होगा, क्योंकि आहार के ऊपर ही हमारा मन और बुद्धि डिपेंड है। अगर हम तमोगुणी आहार खाते हैं तो हमारे विचार मन और बुद्धि तमोगुणी हो जाती है, और अगर हम शुद्ध आहार खाते हैं तो वेद कहता है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्वा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारा मन शुद्ध हो सकता है, हमारी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। और सब लोग जानते हैं प्याज जो है वे तमोगुणी है, सब लोग इसे मानते भी हैं, डॉक्टर भी कहते हैं प्याज तमोगुणी है। वहां पर कोने में बैठकर अगर प्याज काटा जाए तो यहां पर बैठने वाले की आंख में आंसू आ जाएंगे। अब कल्पना कीजिए वे जब पेट में जाएगा तब कितना तमोगुण पैदा कर देगा। तो ऐसा तमोगुणी आहार खाने से विचार और मन तमोगुणी बनते हैं और व्यक्ति तमोगुणी कार्य करता है, उस तमोगुणी कार्यवश वे नर्क में जाता है। इसलिए अगर सत्वगुण में स्थित होना हो, और भगवान और भी बहुत सारे श्लोक कहे हैं, सत्व संजायते ज्ञानम, ज्ञान तब प्राप्त हो सकता है जब सत्वगुणी व्यक्ति हो, और सत्वगुणी व्यक्ति तब बन सकता है जब सत्वगुणी आहार लेता है। तो सत्वगुणी बनने के लिए प्याज लहसुन और चाय कॉफी इत्यादि नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी कुछ लोग तर्क करते हैं परंतु भगवान ने बनाया है, अगर हमें नहीं खाना होता तो भगवान क्यों बनाते। तो भगवान पूर्ण है, ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, क्योंकि भगवान पूर्ण है, इसलिए भगवान के अंदर से जो कुछ निकला है वह भी पूर्ण है। और पूर्ण का अर्थ होता है उस पूर्ण में अच्छी भी चीज है और बुरी भी है। अगर उसमें बुरी चीज नहीं है तो वह पूर्ण नहीं माना जाता है। भगवान पूर्ण होने के नाते उनसे जो निकलता है वह भी पूर्ण होता है। और पूर्ण का अर्थ है उसमें अच्छा बुरा सब कुछ हो। अगर उसमें बुरी चीज न होती तो वे पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको कोई सुंदर बंगलो या फ्लैट खरीदना है तो आप सबसे पहले देखोगे ठीक प्रकार से रूम है, किचन है और टॉयलेट इत्यादि ठीक से तो है। कुछ लोग तो अटैच टॉयलेट चाहते हैं। अगर उस घर में टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, तो क्या वे पूर्ण घर है? वे घर तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसमें टॉयलेट हो। तो उसी प्रकार भगवान जो पूर्ण कहे जाते हैं और उनसे पूर्ण वस्तु निकलती है वे तभी पूर्ण कही जाती हैं जब उसमें अच्छी और बुरी सब चीज हो। तो हमारे घर में टॉयलेट है उसका अर्थ यह है कि हम 24 घंटे टॉयलेट में बैठे रहे। तो भगवान ने यह कांदा लहसुन बनाया है उसका अर्थ यह हो गया कि 24 घंटे ये खाते रहे? नहीं। तो भगवान ने जो चीज बनाई है, भगवान ने जो बनाया है वे मत देखिए, भगवान जो कह रहे हैं यह हमें देखना है। भगवान कहते हैं सत्वगुणी आहार लेना चाहिए और सत्वगुणी आहार में कांदा लहसुन चाय कॉफी इत्यादि त्याज्य है। और जब यह हम त्यागेंगे तब ही मोक्ष के प्रति हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दूसरा यम है, दूसरी चीज जो नहीं करनी है वो है नशा, किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज जो नहीं करने की है वो है परस्त्री गमन। अपनी पत्नी के अलावा दूसरी किसी भी स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार से होता है तो हृदय में शुद्धता नहीं बनती है, व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। तो परस्त्री गमन नहीं करना चाहिए। हालांकि हमारे भारतवर्ष में यह नियम प्रायः सब लोग पालन करते हैं। और चौथा यम है, चौथी चीज है जो नहीं करनी है वो है जुआ। किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब जुआ में आप सब कुछ ले लीजिए, कैसीनो में जाकर जो ताश खेलते हैं वह नहीं खेलना चाहिए, पैसे लगाकर नहीं खेलना चाहिए। और एक भक्त ने एक किताब लिखी है, मैं पढ़ रहा था, उसमें तो यहां तक लिखा है कि कौन बनेगा करोड़पति भी नहीं खेलना चाहिए, वह भी एक जुआ है। हाई रिस्क बिजनेस भी नहीं करना चाहिए, वह भी एक जुआ है। क्योंकि इस प्रकार से हम करते हैं तो हम सत्य वचन कभी नहीं बोल सकते हैं, सत्यता जीवन से निकल जाती है। इसलिए इन चारों पापों से हमें बचना चाहिए। यदि हम यह चार पाप करते हैं तो इस चार पाप की सजा बहुत भीषण है। खैर इस लास्ट दिन में नरक का वर्णन करना नहीं चाहता हूं, परंतु बहुत भयावह इसकी सजा मिलती है। और सभी पापों के मूल है यह चार पाप। इसलिए सभी व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम यह चार यम का पालन करें। सबसे पहले मांसाहार नहीं करना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए, परस्त्री संग नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये चार चीज अगर किसी को भक्त बनना है उसे यह चार चीज नहीं करना चाहिए। क्षमा कीजिए, अगर किसी को मनुष्य बनना है उसे यह चार चीज नहीं करनी चाहिए। एक समय प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया और एक व्यक्ति यह प्रवचन सुनकर प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद अब मैं भक्त बन गया, आप मुझे दीक्षा दे दो क्योंकि मैंने मांसाहार करना बंद कर दिया, नशा करना बंद कर दिया, जुआ खेलना बंद कर दिया और परस्त्री संग करना बंद कर दिया, मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, अब मुझे दीक्षा दो। प्रभुपाद जी ने कहा भक्त नहीं बना है तू मनुष्य बना। जब तक व्यक्ति इन वस्तु का पालन नहीं करता है तब तक वो मनुष्य नहीं रहता है। मनुष्य तब बनता है जब यह यम का पालन करे। इतनी चीजों से बचे। तो ये चार चीज हमारे जीवन में नहीं करनी चाहिए। और तो ये हुआ जो नहीं करना है। और भक्त बनने के लिए हमें जो करना है वे ज्यादा नहीं, केवल पांच चीज है। हमें भक्ति करनी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है ये भगवान के, भगवान से ज्यादा कौन जान सकता है। अक्सर इस संसार में कई सारे लोग भक्ति करना तो चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है। और अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने नुस्खे के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, परंतु अपनी बुद्धि के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। सबसे पहले किसी व्यक्ति को अगर हमें प्रसन्न करना है तो यह जानना चाहिए कि वह व्यक्ति मैं क्या करूंगा तो वह प्रसन्न होगा। उस व्यक्ति के बारे में ही नहीं, हम नहीं जानते हैं और हम हमारी बुद्धि से उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दिए तो वह व्यक्ति प्रसन्नता के बदले दुखी भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ता दौड़ता यहां पर आए और यहां आकर कहे कि मैं एक महीने से प्यासा हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो पानी दो, और हम सबके हृदय में उनके ऊपर दया आ जाए और उस दया के कारण हम सोचे कि अरे बाप रे बाप, इतना अच्छा व्यक्ति है, एक महीने से पानी नहीं पिया है, इसे तो घी देना चाहिए। तो हम घर पे जाकर घी का घड़ा भरकर लेकर आए तो उसे अगर हम घी देंगे तो उसकी प्यास बुझेगी? आप कहोगे पानी से बहुत गुना महंगा होता है घी, और इतनी मेहनत करके मैं घी लेकर आया, घी लेकर आई, तो उनकी प्यास क्यों नहीं बुझेगी? तो सबसे पहले जानना चाहे कि वो व्यक्ति पानी मांग रहा है तो उसे पानी ही देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान की जो मांग है वही हमें देनी चाहिए, न कि हमारी बुद्धि से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान को जो चाहिए वे भगवान ने अपने शास्त्रों में कह दिया है, उसके लिए हमें हमारी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। कई सारे लोग ये वार रहते हैं, वो वार रहते हैं, और हम पूछते हैं कि आप ये वार क्यों रहते हो? कुछ लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सब वार रहते हैं। सब लोग पूछा जाए कि ये आप क्यों रह रहे हो तो उसका उत्तर नहीं है, बस हमारे दादा रहते थे, वो रहते थे, वो रहती थी, उनके घर पे लोग रहते हैं इसलिए मैं रहते हैं। हमारे जीवन में हमें वो कार्य नहीं करने हैं जो दूसरे लोग करते हैं, हमारे जीवन में हमें वो कार्य करना है जो वेद और शास्त्र में लिखा है। क्या शास्त्र में ऐसी चीज लिखी है? लोग शास्त्र को नहीं जानते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कार्य करने लगते हैं, परंतु सबसे पहले यह जानना चाहिए भगवान किस चीज से प्रसन्न होते हैं। तो भक्त बनने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से सनातन गोस्वामी को उनकी प्रसन्नता करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए पांच साधन, पांच कार्य बताए हैं। वे कहते हैं साधु संघ नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति र श्री ध्यान सेवन। सबसे पहले भगवान को प्रसन्न करने के पांच तरीके में से, पांच कार्य में से सबसे पहला कार्य है साधु का संग करना। साधु का अर्थ होता है भक्त, भक्तों का संग करना चाहिए। अब देखिए पहले चार हम जो नहीं करना चाहिए वह चर्चा किए, अब पांच चीज जो हमें करनी है उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हमें करनी है भक्तों का संग। जो कृष्ण के भक्त है कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए। वैसे भगवान के अनुसार इस संसार में भगवान के भक्त की बहुत कमी है, बहुत कम भगवान के भक्त देखने मिलते हैं। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिध्यते, करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में से कोई कोई विरले ही भगवान श्री कृष्ण को तत्व से समझ सकते हैं और उनके भजन में लग सकते हैं। परंतु ऐसे भक्तों का संग करना यह है जीवन की बहुत बड़ी सिद्धि। और ऐसे भक्तों का अगर थोड़ा भी संग किया जाए साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ऐसे भक्त का अगर लव एक सेकेंड का छोटा सा भी हिस्सा साधु का संग भक्तों का संग किया जाए तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है और सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और अगर आपको जानना है तो इतिहास खोलकर देख लीजिए, ऐसे हजारों हजारों भक्तों को जो जो लोग मिले हैं उन लोगों का उद्धार हुआ है। नारद मुनि भगवान के परम भक्त, नारद मुनि जिन जिन लोगों को मिले वे लोग परम पवित्र भगवान के भक्त बन गए। दक्ष प्रजापति के हजारों पुत्र केवल कुछ मिनट नारद मुनि को मिले भक्त बन गए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जितने जितने लोग नारद मुनि को मिले सब लोग भक्त बने, क्योंकि भक्त एक पारस मणि के समान होता है। जैसे पारस लोहे के साथ घिसा जाए तो वह लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही अगर कोई भक्त के साथ संग करता है तो वह भी भक्त बन जाता है। और एक संत तो कहते हैं कि भक्त जो है वे तो पारस मणि से भी बड़ा है। क्यों? वे लिखते हैं पारस और संत में बड़ो अंतर जान। पारस और संत में, भक्त में बहुत अंतर है, क्योंकि पारस लोहे को पारस नहीं बनाता है, पारस लोहे को केवल सोना बनाता है, परंतु संत करे आप समान। संत अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस पापी व्यक्ति को अपने जैसा ही संत बना देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि भक्तों का संग करना चाहिए सबसे पहले। और भागवत कहता है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में प्रवेश करने के लिए अगर कोई तत्व है तो है भक्तों का संग। आज आप भगवत गीता के बारे में कुछ जाने, कुछ समझे, ये क्यों हुआ, अगर आप बुद्धि लगाएंगे तो देखेंगे किसी ना किसी भक्तों का संग हुआ और उन्होंने हमें यहां का पता दिया और तब जाकर हम यहां पर आए। भक्ति में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला द्वार है भक्तों का संग करना। इसलिए भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले वे भक्तों के साथ रहे। इस दुनिया में कई सारे पापी तापी लोग हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। असत संग त्यागा, यही वैष्णव आचार। वैष्णव को चाहिए कि वे असत संग त्यागे, क्योंकि अगर असत संग करते हैं, अभक्तों का संग करते हैं तो इस जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जितने जी माता पिता हैं उन्हें मैं सावधान करता हूं कि अपने बच्चों का ध्यान रखे कि वे असत संग में उसे ना भेजे, क्योंकि यह जीवन दो चीज पर खड़ा है, संस्कार और संग, और उनमें भी संग जो है ये बहुत बड़ा पहलू है। कितने भी अच्छे संस्कार क्यों ना दो, अगर उसे गलत संग हो जाता है तो वे व्यक्ति बिगड़ जाएगा। शास्त्र में ऐसी कई कथा है और इस संसार में भी बहुत देखने मिलता है। कितने सारे माता पिता वो देखते भी अनुभव करते हैं कि हम हमारे बच्चे को हमारे जीवन में ऐसी गलत शिक्षा कभी नहीं दी, ऐसे गलत संस्कार कभी नहीं दिए, फिर भी ये लड़का क्यों बिगड़ रहा है। माता पिता अच्छे संस्कार देने का प्रयास करते हैं परंतु फिर भी उनके बच्चे बिगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे गलत संग कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और गलत लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा खतरा है। अब अगर मैं कथा कहूंगा तो बहुत बढ़ जाएगा। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। उनके माता पिता ने बहुत सुंदर संस्कार दिया था, वेद पाठित ब्राह्मण था और अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, परंतु जीवन में एक सेकंड के लिए गलत संग कर लिया, एक गलत दृश्य देख लिया, उसके अच्छे जीवन के ऊपर पानी फिर गया। और जो व्यक्ति वेद और शास्त्र को जानने वाला था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, साधु पुरुष था, एक सेकंड गलत संग करने के कारण वे इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी बन गया। इसलिए हमें चाहिए कि गलत संग ना करें, अच्छा संग करें। माता पिताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे संग में भेजे, भगवान के भक्तों के साथ रखे और अपने बच्चे को भक्ति सिखाए। मैं अक्सर कहता हूँ, इस संसार के माता पिता अपने पुत्र को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़े खरीद कर देते हैं, अच्छे से अच्छा खाना देते हैं, परंतु भक्ति नहीं सिखाते। आप अपने पुत्र को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजिए, अच्छे से अच्छे कपड़े दीजिए, अच्छे से अच्छा खाना दीजिए, परंतु अगर उसे भक्ति नहीं सिखाएंगे तो उनका कोई भरोसा नहीं है कि बड़ा होकर वे आपको रखेगा या नहीं रखेगा। परंतु ये कुछ नहीं देंगे और अपने पुत्र को केवल भक्ति सिखा दीजिए, सर्टिफिकेट हम देते हैं कि वे बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करने लगता है तो सारे देवी गुण, देवताओं के गुण, सर्वे गुणे तत्र समा सते सुरा, देवताओं के गुण उसमें आ जाते हैं। इसलिए माता पिताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को गलत संग में ना भेजे, भक्तों के संग में भेजे, भगवान की सेवा में लगाए। और वही माता पिता वास्तविक असली माता पिता है जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र को वनवास मिला और वनवास के लिए जा रहे थे, तब लक्ष्मण को जब पता चला तो प्रभु रामचंद्र के पास आए और आकर कहने लगे, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो रामचंद्र ने कहा कि भरत और शत्रुघ्न ने अपने मामा के वहां गए हैं, इसलिए तुम यहाँ पर रहो और माता पिता की सेवा करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो भगवान श्री रामचंद्र ने उसे बहुत समझाया, फिर भी लक्ष्मण नहीं माने। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, ठीक है, अगर आपको चलना ही है मेरे साथ, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना ही है तो सबसे पहले अपनी माँ की आज्ञा लेकर आओ। तब लखनलाल अपनी माँ सुमित्रा के पास गए और सुमित्रा के पास जाकर लखनलाल लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माते, प्रभु श्री रामचंद्र 14 साल के लिए वन में जा रहे हैं, तो मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं, क्या मैं जाऊं उनके साथ? तब सुमित्रा जी ने जो आचरण करके दिखाया है, जगत की सभी महिलाओं को यह आचरण अपने जीवन में ढालना चाहिए। सुमित्रा ने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र वन में जा रहे हैं, वे दूसरों के लिए वन में नहीं जा रहे हैं, वे तुम्हारे लिए, तुम्र भाग राम वन जाई, दूसर है तात कछुनाई, हे तात, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य के कारण तुम्हारे बड़े भाई राम वन में जा रहे हैं, इसलिए तुम उनके साथ जाओ और उनकी सेवा करो। और ऐसी सेवा करना, अपने भाई राम की ऐसी सेवा करना कि 14 साल के लिए एक मिनट भी उसे अयोध्या की याद ना आए। अपने नींद के ऊपर कंट्रोल करना, एक मिनट भी सोना नहीं और खाना नहीं। और जैसे माता ने कहा वैसे ही वह पुत्र लक्ष्मण जी ने उनका आदेश का पालन किया। 14 साल के लिए ठीक से लक्ष्मण ने खाया नहीं और ठीक से लक्ष्मण ने सोया नहीं, और इसी के कारण लक्ष्मण जी आगे चलकर मेघनाथ को मार सके। क्योंकि मेघनाथ को वरदान था, उसे वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 साल के लिए खाया नहीं है और सोया नहीं है। तो ये शास्त्र की एक लिंक है, परंतु तात्पर्य यह है, जब लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए जा रहे थे तो माता सुमित्रा कहती हैं कि मुझे पूछने क्यों आ गया? भगवान की सेवा करने जा रहा है, भगवान की भक्ति करने जा रहा है, तो उसमें पूछने की आवश्यकता है? अगर भगवान की सेवा नहीं करता है तो यह जीवन तो जल जाने लायक है, जरूसु संपत्ति सदन, यह जीवन जल जाने लायक है। वास्तविक तुम आज भगवान श्री राम की सेवा भजन करने के लिए जा रहे हो, वास्तविक पुत्रवती आज में हुई, आज मैं पुत्रवती कहलाने के योग्य हूं, आज मैं पुत्र वाली हूं, क्योंकि मेरा पुत्र राम की सेवा करने के लिए जा रहा है। बहुत ही सुंदर कहती है, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जातु सितु होई। इस संसार में वही माता पुत्रवती पुत्र वाली कहलाने के लायक है जिसके जिसका पुत्र राम का भक्त हो। और जिनका पुत्र भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति नहीं करता है, नतरु बांज बलु बानी बियानी, राम विमुख सुखते इतना ही, जिसका पुत्र राम और कृष्ण की सेवा नहीं करता है, ऐसी माँ को चाहिए कि पुत्र को जन्म न दे, एक पत्थर को पाले। क्योंकि जिसका बालक भगवान की भक्ति नहीं करता है, वह तो बड़ा होकर अपने माता पिता की जवानी को काटने के लिए ही पड़ा होता है। तो आज मैं धन्य हो गई क्योंकि मेरा पुत्र भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है। तात्पर्य यह है, हमें भक्तों का संग करना चाहिए और हमारे बच्चों को भक्त के संग में रखना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से नहीं रखेंगे, कलयुग के प्रभाव के कारण हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो भगवान सबसे पहले कह रहे हैं, साधु संग, भक्तों के संग में रहना चाहिए और अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। अगर अभक्तों का अगर थोड़ा भी संग करते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा खतरा है। शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर घटना है। एक शिकारी था और जंगल में शिकार करने के लिए बहुत घूम रहा था, लेकिन उसे शिकार नहीं मिला। जब उसे शिकार नहीं मिला तो एक पेड़ के नीचे जाकर वो सो गया। बहुत नींद आ रही थी और उस वक्त बिल्कुल सिर पर सूर्य था, 12-1 बजे थे और मंद मंद हवा आ रही थी, और हवा के कारण जिस जो सो रहा था उसके ऊपर पेड़ के पत्ते की छांव थी। हवा के कारण वो पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और सूर्य का प्रकाश उसके सिर के ऊपर आ रहा था। तो ऊपर एक बाज उड़ रहा था। उस बाज ने उड़ते उड़ते देखा कि बेचारा ये व्यक्ति सो रहा है और सूर्य के प्रकाश के कारण इसे ठीक से नींद नहीं आएगी। तो वे उड़ते उड़ते उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ गया और अपने पंख फैला दिया ताकि उस व्यक्ति के ऊपर सूर्य का ताप ना आए। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की सेवा किया। उसी वक्त उस बाज के बाजू में एक कौवा आकर बैठ गया। अब कौवे का स्वभाव तो आप जानते ही हैं, जहां पर बैठता है वहां पर 2 नंबर कर देता है। तो कौवा ने अपने स्वभाव के अनुसार तुरंत 2 नंबर किया और वह उस व्यक्ति के सिर के ऊपर गिरा। तो कौवा तो बस ये टट्टी करके चला गया। वो व्यक्ति उठा, शिकारी उठा और उठकर तुरंत देखा तो वो बाज ऊपर बैठा था, अपना तीर हाथ में लिया, धनुष हाथ में लिया और तुरंत उस बाज को मार दिया। वो बाज नीचे गिरा और नीचे गिरते हुए उस बाज ने उस व्यक्ति को, शिकारी को कहा कि मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा था, तुम्हें धूप ना आए इसलिए मैं अपनी पंख फैलाकर बैठा था, तुम्हारी सेवा कर रहा था और तुमने मुझे मार दिया। बताओ उसमें मेरा क्या दोष है, मेरे कौन से दोष के कारण तुमने मुझे मार दिया। शिकारी ने कहा, एक दोष है तुम्हारा। तुम्हारा दोष यह है कि तुम सेवा कर रहे थे, यह ठीक बात है, परंतु कौवा तुम्हारे बाजू में आया तो तुम्हें उड़ जाना चाहिए, गलत संग नहीं करना चाहिए। तो एक सेकंड के लिए भी तुम उस कौवे के बाजू में बैठे, इसलिए आज तुम्हें मरना पड़ा। ठीक उसी प्रकार एक सेकंड भी हम अगर गलत संग करेंगे, जो भक्त नहीं है ऐसे अभक्तों के साथ संग करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि असत संग त्यागना चाहिए, गलत संग नहीं करना चाहिए, और इसका पॉजिटिव है भक्तों का संग करना चाहिए। कहीं भी आप ट्रेन में जाते हो, भक्त मिलते हैं। अब यह भी ध्यान में रखना है, भक्तों का संग का अर्थ यह नहीं कि उसके बाजू में बैठ जाए। भक्तों का संग का अर्थ है कि भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। बहुत बड़े महात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, और चींटी और छोटे छोटे कीड़े भी उनका संग करते हैं, परंतु वे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्तों का संग करके उनसे सुनना चाहिए। जब भी आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में कोई तिलक और कंठी वाले मिल गए हो, कहीं भी आपको मिले तो उसे प्रश्न जिज्ञासा करनी चाहिए और उसे ज्ञान लेना चाहिए। तो सबसे पहले भक्तों का संग करना चाहिए। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति को मेरे नाम का महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए, महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि इस युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक ही साधन है, वो है भगवान का नाम। अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्र में अलग अलग कार्य, अलग अलग साधन बताए गए हैं। सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए कृते ध्यायतो विष्णु, भगवान का ध्यान करने का विधान है। हजारों हजारों सालों तक भगवान का ध्यान और तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति सतयुग में कर सकते हैं, परंतु सतयुग में जो विधान बताया है उस विधान से त्रेता युग में हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अलग अलग युगों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग साधन है। और त्रेता युग में त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने का विधान है। बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा त्रेता युग में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए द्वापरे परिचर्यायाम भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो कुछ लोग सतयुग का जो उपाय है, सतयुग का जो साधन है, वे कलयुग में यूज करना चाहते हैं और करते भी हैं। परंतु जिस युग में जो कार्य करने के लिए कहा गया है वही कार्य करना चाहिए। तपस्या और ध्यान सतयुग में करने को कहा है, कलयुग में नहीं करना चाहिए। कलयुग में कोई कर ही नहीं सकता है। तो सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए ध्यान करना चाहिए, त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने चाहिए, द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। परंतु कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान की प्राप्ति तब ही हो सकती है जब भगवान का नाम लिया जाए। भगवान के नाम के अलावा कलयुग में भगवान की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता है। और केवल भागवत ही नहीं, समस्त वेद और शास्त्र इसके प्रमाण है। जैसे पहले दिन हमने आपको कहा था, हम यहां पर जो भी कहते हैं वेद और शास्त्र से बता रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पूछेंगे ये कहां पर लिखा है, तो ये नहीं बताएंगे। अपनी बुद्धि से अनुसार वे बताते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग मूर्ख हो सकते हैं, परंतु भगवान ने जो कहा है वे हमें पालन करना है। शास्त्र में कहा है कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। बहुत बहुत जगह कहा है, तपन्तु तापे प्रपतन्तु पर्वता दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान यजन्तु यज्ञे विवदन्तु वादे कलि विना नैव मृतिं तरन्ति। कलयुग में कितनी भी बड़ी तपस्या कर लो, ध्यान कर लो, योग कर लो, जब तक हरि का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक कलयुग में उद्धार नहीं होने वाला है। गरुड़ पुराण में भी कहा है गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नाम समस्तांचे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि गोकोटि दानम करोड़ों करोड़ों गाय का दान अगर ग्रहण के दिन किया जाए और उनका जो पुण्य प्राप्त होता है, और यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम बड़े बड़े पहाड़ जैसे सोने जितना दान करो और कोटि कल्प तक गंगा यमुना सरस्वती के किनारे पर आप स्नान करो रहो, ये सब पुण्य एकत्रित करके अगर आप भगवान के नाम के साथ तुलना करोगे तो ये सारे पुण्य भगवान के नाम के सौवे हिस्से के बराबर भी नहीं होते। तो इस प्रकार से कलयुग में भगवान का नाम लेने का विधान है, और कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। समस्त पुराण आदि पुराण में कहा गया है तस्मात नामानि कौन्तेय भजस्व दृढ़ मानस नाम युक्तो प्रियस्माकं नाम युक्तो भवार्जुन। आदि पुराण में कहते हैं इसलिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और भगवान के नाम का जप करके ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। और भी सारी संहिता और इत्यादि में कहा गया है सत्व शुद्धि कर्म नाम नाम ज्ञान प्रदम स्मृत मुमुक्षुणाम मुक्ति पदम काम नाम सर्व कामदम। नाम ही मुक्ति दे सकता है और नाम ही सब कुछ प्रदान कर सकता है। इस कलयुग में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान का नाम लेना ये कलयुग का साधन है। प्रायः सब लोग इस बात को जानते हैं, प्राय सब लोग जानते हैं कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है, भगवान के नाम लेने से ही जीव का उद्धार हो सकता है। परंतु कुछ लोग यहां मार खा जाते हैं नाम लेना कौन सा है। लोग जानते हैं भगवान का नाम लेकर हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम लेने की भी कुछ विधि है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस बकने लगे, भगवान का नाम लेने की विधि है और वो विधि भी भगवान ही बता रहे हैं। समस्त वेद और पुराण इसके प्रमाण है। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है इस कलयुग में भगवान का कौन सा नाम लेना चाहिए, तो पद्म पुराण कहती है द्वात्रिश दक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। कहते हैं द्वात्रिश दक्षरम मंत्र, द्वा अर्थात दो, त्रिश का त्रिश अर्थात तीस, तो दो प्लस तीस कितने होते हैं? बत्तीस। पद्म पुराण में लिखा है 32 अक्षर का जो मंत्र है, वह मंत्र का कलयुग में अगर कोई जाप करते हैं तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, तो राधा कृष्ण जहां पर रहते हैं उस धाम को वह प्राप्त कर सकता है। अब 32 अक्षर का कौन सा मंत्र है आप ही देख लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और इतना ही नहीं और भी कई जगह लिखा है, कलि संतरण उपनिषद में लिखा है बिल्कुल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र दिया है और महामंत्र के साथ लिखा है कि इति सोड सकाम नामना कलि कलमश नाशनम। यह 16 अक्षर का मंत्र ही कलयुग के सभी कलमशों का नाश कर सकता है और सभी वेदों का यह सार है, सभी वेदों का यह निचोड़ है। इसलिए कलयुग में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, यह 16 अक्षर के नाम का जप करना चाहिए। इसे महामंत्र कहा जाता है, सभी मंत्रों का राजा है यह महामंत्र। और इसे महामंत्र इसलिए कहा जाता है, और जितने भी मंत्र है वे सब मंत्र है। गायत्री मंत्र को भी केवल मंत्र कहा जाता है, परंतु हरे कृष्ण इस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, क्योंकि बाकी के जितने भी मंत्र हैं वे सब मंत्र का उच्चारण करने के लिए योग्य समय चाहिए, योग्य आसन चाहिए, योग्य स्थान चाहिए, पवित्रता चाहिए, यह सब कुछ आवश्यकता है। परंतु भगवान का यह महामंत्र जपने में किसी भी प्रकार का समय नहीं, किसी भी प्रकार का पात्र नहीं, पात्र अपात्र समय अपवित्र अवस्था कोई भी किसी भी अवस्था में हम इस भगवान के महामंत्र का जप कर सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। तो इस महामंत्र का जप हमें नित्य करना चाहिए, ये भगवान दूसरी चीज बता रहे हैं। तो आप कहेंगे इस महामंत्र का जप बस ऐसे ही करते रहे, तो यह महामंत्र का जप करने की भी विधि है, क्योंकि समय बहुत जा रहा है। वैसे तो हम भगवद गीता के अंतिम दिन में आपको सिखाते हैं किस प्रकार से माला जपनी चाहिए, परंतु संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, जैसे आपको यह माला दी जाएगी, भगवान कहते हैं विधि अनुसार बिल्कुल नाम गिन गिन कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं भगवान का नाम लेना है उसमें क्या गिनना, भगवान का नाम लेना है तो वे तो अनगिनत लेना चाहिए, गिनने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में जो कीमती वस्तु होती है उसे हम अक्सर गिनते रहते हैं। पैसे का बंडल जब हाथ में आता है तो पानी लगा लगा कर हम गिनते हैं 1 2 3 4, परंतु ये साधारण भौतिक धन से कई गुना बड़ा धन है भगवान का नाम। ये जो भगवान का नाम, ये जो धन है, ये इस पृथ्वी का धन नहीं है। जन लोक महलोक तप लोक सिद्ध लोक स्वर्ग लोक का भी ये धन नहीं है, ये ब्रह्म लोक का भी धन नहीं है, ये तो भगवान के धाम गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये तो गोलोक का धन है। तो इस गोलोक के धन को तो बिल्कुल गिन गिन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये माला दी जाएगी, आप ले सकते हो। इसमें जो सबसे बड़ा मोती है, इस मोती पर एक मंत्र बोलना है जिसे पंच तत्व मंत्र कहते हैं, ये भी आपको दिया जाएगा। और वो मंत्र है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये मंत्र लेकर शुरू करना है, एक मोती पर एक महामंत्र बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ लोग नए नए जो माला करने में लगे हैं, क्योंकि हमारा मंत्र बहुत बड़ा है, इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं करना है, एक मोती पर एक ही महामंत्र लेना है, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से फिर दूसरे मोती पर जाकर एक बार महामंत्र लेना है, उस प्रकार 108 मोती इसमें है। तो घूमकर जब आप यहां पर आ जाओगे, जब यहां पर आ जाते हो तो फिर से जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। परंतु ध्यान रहे, जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाए तब आपकी एक माला हो जाएगी, और जब एक माला हो जाएगी तो इसको पार मत कीजिए, यहां से पीछे घूम जाइए, इतना ध्यान में रखना है। तो ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए। शुरू शुरू में अगर ये भूल भी हो जाए तो इसमें कोई बड़ा पाप नहीं है, एक विधि है और उस विधि के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो इस प्रकार से एक माला करने में 7 मिनट या 10 मिनट लगती है। तो भगवान ने वैसे तो 64 माला करने का नियम दिया है, परंतु भगवान के भक्त बहुत कृपालु होते हैं, वे बहुत बड़ा रिस्क लेकर भी भक्तों को कंसीडर कर देते हैं। तो हमारे आचार्य प्रभुपाद जी 64 माला करने का जो विधान था उसे देश काल पात्र के अनुसार देखकर केवल 16 माला जप करने का विधान दिया है। तो हमें चाहिए प्रैक्टिकल, आप कह रहे थे प्रभु जी प्रैक्टिकल बताइए, तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि 16 इस प्रकार से एक माला, इस प्रकार से 16 माले का जप एक दिन में एक बार करना चाहिए। आप कहोगे तो बहुत बड़ा डोज मिल गया, टेंशन मत लीजिए। शुरू शुरू में एक माला से शुरू कीजिए, धीरे धीरे 2 कीजिए, फिर 4 कीजिए, 8 कीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपको टाइम हो, उस प्रकार से आपको इसे बढ़ाते रहना चाहिए। और यहाँ पर भगवान कहते हैं नाम संकीर्तन, मेरा नाम तो लेना चाहिए परंतु एकांत में अकेले जाकर नहीं लेना चाहिए, हो सके तो भक्तों के साथ बैठकर नाम लेना चाहिए, भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करना चाहिए। एकांत में जाकर अगर करेंगे तो बहुत गड़बड़ होगी। इसलिए दूसरा नियम है, पहला नियम है भक्तों के संग में रहना चाहिए, दूसरा नियम है भगवान के नाम का जप करना चाहिए। परंतु उसमें बुद्धिमानी क्या है, कौन से नाम का जप करना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो बहुत चीज कहने लायक है, समय हो चुका है, अब केवल मैं संक्षिप्त में आपको बता दे रहा हूं। 5 चीज है जो करनी है, 2 चीज हो गई, तीसरी चीज है भागवत श्रवण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जो सभी वेद और शास्त्र का पका हुआ फल है, निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुकादय अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, यह श्रीमद् भागवतम सभी वेद और शास्त्रों का पका हुआ फल है, बहुत ही सुंदर रसमय यह शास्त्र है। और इस भागवत का अगर कोई श्रवण करता है तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकता है। और इस भागवत के रचयिता व्यास देव तो यहां तक लिखते हैं कि यह भागवत सुनने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर कोई व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा कर दे केवल, सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुशुषु भी तत्क्षणात्, हृदय में इच्छा हो जाए कि मैं भागवत सुनूंगा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में बंदी हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने हृदय में कैद कर लेते हैं, और ऐसे कैद कर लेते हैं जैसे लोभी अपने धन को तिजोरी में बंद कर देता है। डायमंड वाले को बहुत अनुभव होगा, खींचते रहते हैं पूरे 2-3। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को अपने हृदय में रखते हैं, भागवत सुनकर भगवान को हृदय में रखा जाता है, यह है तीसरा कार्य। तो भागवत का श्रवण करना चाहिए। तो आप कहोगे साधु का भक्तों का संग करेंगे हम और हम भगवान का नाम भी लेंगे, परंतु ये भागवत श्रवण करने कहां जाएंगे? तो भागवत श्रवण करने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर अपने सेंटरों में, इस्कॉन मंदिरों में रोज सुबह 8 से 9 बजे तक ये भागवत कथा सुनने के लिए नियम रखा है, भागवत कथा होती है। तो जो लोग मंदिर में जा सकते हैं उसे मंदिर में जाना चाहिए, और यह भागवत का श्रवण आपके घर के नजदीक प्रतिदिन शाम को कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम होता है, वहां जाकर भी आप भागवत का श्रवण कर सकते हैं। तो तीन चीज हुई, भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। चौथी चीज है भगवान के धाम में वास करना चाहिए, भगवान के धाम में जाना चाहिए। भगवान के धाम का अर्थ होता है जहां पर भगवान ने लीला की है, जहां पर भगवान जन्म लेते हैं, उस स्थल को भगवान का धाम कहा जाता है। तो ऐसे भगवान के धाम मथुरा मंडल, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, इस धामों में जाना चाहिए और अपने आप को भक्ति में संलग्न रखना चाहिए। परंतु अगर कोई व्यक्ति इस धाम में नहीं जा सकता है तो प्रभुपाद जी ने वही धाम के एक टुकड़े को हमारे ही शहर में, हमारे नजदीक उसी धाम के एक हिस्से को लाकर रख दिया है अपने इस्कॉन सेंटर के रूप में। तो अगर कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी की संस्था में इस्कॉन मंदिर में जाता है तो धाम में जाने में और इस्कॉन मंदिर में जाने में कोई अंतर नहीं है। इसलिए रोज धाम में न जा सको तो कोई बात नहीं, कम से कम रविवार को तो धाम में जाना चाहिए। तो इनका भी आपको एड्रेस दिया जाएगा। और पांचवा अंतिम जो कार्य हमें करना है वो है श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, भगवान के अर्च विग्रह का श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। कलयुग में भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। आठ प्रकार के भगवान के अर्च विग्रह होते हैं, शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या, सैकति इत्यादि अलग अलग प्रकार के भगवान की विग्रह होते हैं, उनकी सेवा करना, यह पांचवा विधान। इस प्रकार से यह पांच साधनों के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ा सकते हैं और ये पांच साधन को करने वाले भक्त माने जाते हैं। और इनके साथ साथ एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत एक महीने में दो बार आती है और साल में 24 अधिक मास की दो, टोटल 26 एकादशी आती है। और 26 एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए। फलाहार न कर सको तो अन्न नहीं खाना चाहिए, बाकी सब खा सकते हो, परंतु उस दिन ध्यान रहे अन्न नहीं खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप और श्रवण करना चाहिए। और एकादशी व्रत के साथ साथ सब भक्तों को चाहिए कि हम जो भी भोजन लेते हैं वे भोजन सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, और भगवान जब उसे अर्पण कर लेते, ग्रहण कर लेते हैं, तब वह प्रसाद बन जाता है। तो भक्ति में आने के बाद जो लोग भक्ति में आना चाहते हैं उसे हम जो भी बनाते हैं वैसे ही बनाना है। ध्यान रखना है कांदा, लहसुन, चाय, कॉफी इत्यादि न हो, वह चीज अलग से भगवान को अर्पण करनी है और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करना चाहिए। और भी कई सारे विधि और नियम है, परंतु ये सब आप इस्कॉन मंदिर में आकर और कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम में आकर जान सकते हो और भी अपने आप को दृढ़ कर सकते हो। परंतु मुख्य मेन विषय जो है उनकी चर्चा हमने की यहाँ पर। तो इस प्रकार से चार यम और पांच नियम के द्वारा हम भक्ति के, भगवान के नियम कानून को पालन करते हुए हम भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में हम आभार प्रकट करते हैं क्योंकि 6 दिन तक लगातार आपने उत्साह के साथ, धैर्य के साथ हमारी यह वाणी और भगवद गीता कोर्स का श्रवण किया। और भी यह श्रवण करने में इन 6 दिनों में आपको बहुत बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी। पिछले 3 दिनों से सारे एसी बंद है, सबको बहुत गर्मी होने के बाद भी आप लोग धैर्य से यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, तो हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और इनके लिए हम आप सब के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और बस अंत करते करते बस एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। हमने आपको बहुत गिनाया करना है नहीं करना है, इनमें से जितना आप कर सकते हो, परंतु एक चीज याद रखनी चाहिए कि हमें हमारे जीवन में कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। कृष्ण को हमारे जीवन में रखना चाहिए। कृष्ण जब तक हमारे जीवन में है तब तक हम हमारे जीवन में विजयी होंगे। भगवत गीता का अंत करते हुए संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जहाँ पर अर्जुन जैसे भक्त होते हैं, तत्र श्री विजय भूति, वहां पर श्री विजय, वहां पर धन ऐश्वर्य सब कुछ होता है। इसलिए अगर हम हमारे जीवन में कृष्ण को जोड़कर रखते हैं तो हमारा जीवन सफल है, और इस जीवन में और सब कुछ होने के बाद भी हम कृष्ण को नहीं जोड़ते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर हम कृष्ण को नहीं जोड़ेंगे तो यह जीवन बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा। इसलिए कृष्ण को हमारे जीवन में जोड़ना चाहिए। जब कृष्ण अर्जुन को छोड़कर अपने धराधाम पर वापस चले गए, तब अर्जुन 16108 भगवान की पत्नियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहे थे। अर्जुन, जिस अर्जुन की व्याख्या करते हुए, उनका इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में वे धनुर्धर की पोस्ट पर थे। कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडवों को विजय दिलाने वाले अर्जुन थे, परंतु कृष्ण के चले जाने के बाद वह अर्जुन 2-4 भील और काल के छोटे छोटे पुत्रों से हार गए। भील के छोटे छोटे 4-5 पुत्रों ने अर्जुन को हरा दिया और रथ और धनुष सब कुछ छीन लिया। उस वक्त अर्जुन मन ही मन में पश्चाताप कर रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए कह रहे हैं कि मैं वही अर्जुन हूं और ये वही गांडीर है जिसके बल पर मैं द्रुपद की उस सभा में बड़े बड़े सर्वश्रेष्ठ राजा महाराजाओं का मान घटाकर द्रौपदी को जीता था। हे कृष्ण, ये वही अर्जुन है जो इस धनुष की टंकार से शिव जी को प्रसन्न करके पशु पशास्त्र धारण किया था। ये वही अर्जुन है जो इस धनुष के बल पर इंद्र के आधे आसन पर जाकर बैठा था। ये वही अर्जुन है और ये वही गांडीर है जिसके बल पर दुर्गत सैन्य सागर, इस सागर के समान भयावह कौरवों की सेनाओं को वैसे मैंने रौंद डाला जैसे कोई बास छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है। परंतु हे कृष्ण, आज तुम नहीं हो तो ये अर्जुन कुछ काम का नहीं है, ये धनुष कुछ काम का नहीं है, ये रथ कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आपके न रहने के कारण मैं एक छोटे से बच्चों से हार गया। इसलिए प्रभु, आज मैं समझ गया ये सब कुछ विजय में इसलिए हुआ क्योंकि आप इस संसार में थे, आप मेरे साथ थे। तो वास्तव में हमारी विजय तब हो सकती है जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ रखेंगे, और भगवान को अपने साथ रखने का अर्थ है भगवान के नाम को अपने साथ रखना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कृष्णा,
हरे कृष्णा। सबसे पहले इस यात्रा का आज अंतिम दिवस, आप लोग ने पूरी लगन से इसको श्रवण किया है। यहाँ पे अंतिम दिवस है लेकिन यहाँ से आप लोग की यात्रा शुरुआत होगी, सही है? आपकी यात्रा यहाँ से शुरुआत होगी। आज से आपको प्रभु का नाम लेना है, प्रभु का दर्शन करना है, और हमारे राधा गिरधारी मंदिर में आपको हर रविवार को दोपहर को 1 बजे से 3 बजे के प्रोग्राम में जरूर आना है, और शाम को भी हमारा एक प्रोग्राम है 4 से 6 बजे। तो जिनको जैसे एडजस्टमेंट हो, जैसे आ सकते हैं, आप राधा गिरधारी मंदिर मीरा रोड में जरूर आइए। और इस 6 दिन हमने जो श्रवण किया इस लाल गोविंद प्रभु से, हम उनका अभिवादन करते हुए एक बार हरे कृष्ण का महामंत्र बोलें।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।
सबसे पहले आज हमारे मेहमान यहाँ के MLA आमदार विधानसभा, हम लोग जिनको कहते हैं, श्री गोपाल शेट्टी जी, हैं हम इनका स्वागत करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
गोपाल शेट्टी जी ये मुंबई ये बोरीवली मतदार संघ से करीबन 15 साल से चुन के आते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि पॉलिटिशियन नेता कैसा होना चाहिए, राजा ऋषि राजर्षि होना चाहिए। तो हमारे जो गोपाल शेट्टी जी है हमारे मीरा रोड की रथ यात्रा हो या जुहू की रथ यात्रा हो वो अवश्य समय से पहुंच जाते हैं। तो मैं उनसे बोलूंगा ये जो हमारा कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में जानते हैं वो सब हर चीज उनको भगवत गीता के बारे में भी मालूम है। तो मैं चाहूंगा कि वो दो शब्द हमें एक मैसेज दे इस बारे में।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
कलाकार लाल गोविंदा जी इस कला को लगातार 5 साल से आयोजन करने के लिए सभी प्रकार के सहायता करने वाले मेरे मित्र प्रकाश भाई, मेरे साथ में आए हुए डॉक्टर वाड़ीवाला जी, उपस्थित भाई और बहनों, मैं प्रकाश भाई और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रकाश भाई बता रहे थे पहले साल जब कथा का प्रारंभ किया तो 50 लोग थे और आज 5 साल के बाद देखते देखते इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर लगातार 5 दिन अपनी उपस्थिति देते हैं, इसलिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मन की बात करूँ कुछ चले एक तो कथाकार को मैं आप सभी की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए अपने संस्कृति को जीवित रखने का काम देश के बहुत सारे संत करते हैं और उसका अनुकरण करते करते लाल गोविंदा जी ने भी कृष्ण लीला हम सब लोगों को यहाँ पर कई बार दिनों से सुनाते आ रहे। मैं मन की बात ये करना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति कभी कभी अपने धर्म के बारे में सोचता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि इतने साल के परंपरा के बाद में भी देश में इतने सारे साधु संत धार्मिक भावना लोगों में उजागर हो, धार्मिक भावना लोगों में वृद्धि हो इसे प्रयास करते हैं। और हम सब लोग ये भी देखते हैं टीवी के माध्यम से कि लाखों की तादाद में लोग एकत्रित होते हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन टोटलिटी में कभी कभी मैं सोचता हूँ अपने देश के बारे में तो मुझे भी चिंता होती है, आप सबको भी चिंता होती होगी ना। ये 15 दिन के जो घटना के बारे में मैं अगर थोड़ा स्मरण करो आपके सबके दिल दिमाग में तो राम सेतु का मुद्दा हम सबके सामने है। अभी हमने कृष्ण भगवान की भी जय कही है, हरे राम की हमने कहा, लेकिन भगवान राम के बारे में किस प्रकार की चर्चा अपने देश में छिड़ी वो आपने देखा सुना। 4 दिन के पहले नरेंद्र मोदी जी सम्मुखानंद हॉल में आए थे, बहुत सारी बातों में एक बात उन्होंने ये बताई कि भारत सरकार इन दिनों में जो फॉरेन टूरिस्ट है उनको आकर्षित करने के लिए एक फोटो छापा है वहां पर उन्होंने एडवर्टाइज में, जिसमें ये बताया जो कृष्ण लीला में भी है दृश्य आप लोगों ने भी सुना होगा और हम सब लोगों ने सुना है कि कृष्ण भगवान गोपियां जब नदी में नहा रहे थे तो सबके कपड़े लेकर झाड़ पर बैठ गए थे, इस प्रकार का एक दृश्य है। भारत देश इतनी प्रगति करने के बाद में भी भारत देश का कल्चर मॉडर्नाइज होते जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अपने देश में ऐसी कोई बात नहीं जो दृश्य नरेंद्र मोदी पहले बताया कि वहां पर जो एडवर्टाइजिंग किया है उसमें सभी गोपियों को बिना वस्त्र के बताया, बिना वस्त्र के बताया, लोगों को टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए वो दृश्य वहां पर दिखाया गया। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज इतना देश मॉडर्नाइज होने के बाद में भी भारतीय स्त्रियों ने अपनी संस्कृति को त्याग नहीं किया है ना, आज भी नहीं किया। तो उतने साल के पहले तो बात ही मतलब थी है ना, मैंने तो मुंबई निकाली हुई, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश को जो चलाते हैं वो लोग अपने धर्म पर किस प्रकार के आघात करते हैं हम सब लोग देखते हैं। राम सेतु का जो मुद्दा है, हम लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई, लेकिन दुख इस बात का होता है कि सवेरे 10 बजे हम लोगों ने आंदोलन का कार्यक्रम रखा था। मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं को टिका के रखने के हम लोग काम करते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी बड़े पैमाने पर आते नहीं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और हमारा प्रति धर्म जो है एक आवाज के ऊपर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ये दूर से है। तो मैं आप सभी से अपील ये करना चाहूंगा, क्या करना हो आपने, मैं अपनी भावना बताऊंगा, कम से कम हम लोग अपने धर्म को टिकाने के अगर प्रयत्न नहीं करेंगे, हम आवश्यकता से ज्यादा शांत हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ेगा। मैं कभी कभी एक बात ये सोचता हूँ कि जो पहले के दिनों की जो बातें हम लोगों को सुनने के मिलती है, तो किताबों में हम पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कहानी होगी है, कहानी होगा। लेकिन आज जो हम लोग देखते हैं अपने दृश्य में, अपने जीवन के सामने, अपने नजरों के सामने, तो 50 साल के बाद में के लोगों को आज की जो घटना है कोई कहानी लगी, लेकिन वास्तविकता है। जो कुछ बातें बनती है, जो कुछ बातें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो मेरी अपेक्षा हुई कि धार्मिक भावना अपने दिलो दिमाग में अंगीकार करते समय आने वाले दिनों में अपने देश और धर्म का रक्षा किस प्रकार से हो, जिसके बारे में भी सभी लोगों ने थोड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम सोचेंगे नहीं तो आने वाले दिनों में देश किस प्रकार का करवट लेगा, ये कोई हम कह नहीं सकते।
व्यापार करते हुए भी बहुत सुंदर प्रकार शास्त्रों का अध्ययन वगैरह करते हैं, तो इनसे एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि युगम विश्वते युगम कृत्वा अहम् स्वामिने महापुरुषत्वे हरि
एवं परम्परा प्राप्ते महर्षि गुरु सकारे माता वंश प्राप्त करा।
अगर राजऋषि लोग राजा के